हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 10। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु पर गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं केशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूते देवी प्रणमामि हरि प्रे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद दसवां अध्याय जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक नंबर 3। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् प्रवृत्त ಸಮಸ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಧೂತ ವಿಭ್ರಮಃ ಶಶಾಸ ಗಾಮೇಂದ್ರ ಇವಾಜಿತಾಶ್ರಯ ಪರಿಧ್ಯುಪಾಂತಾಮನುಜಾನುವರ್ತಿತ ನಿಶಮ್ಯ ಭೀಷ್ಮೋಕ್ತಮಥಾಚ್ಯುತೋಕ್ತಂ ಪ್ರವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಧೂತ ವಿಭ್ರಮ ಶಶಾಸ ಗಾಮೇಂದ್ರ ಇವಾಜಿತಾಶ್ರಯ ಪರಿಧ್ಯುಪಾಂತಾಂ ಅನುಜಾನುವರ್ತಿತ ನಿಶಮ್ಯ ಭೀಷ್ಮೋಕ್ತಮಥಾಚ್ಯುತೋಕ್ತಂ ಪ್ರವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಧೂತ ವಿಭ್ರಮ ಶಶಾಸ ಗಾಮೇಂದ್ರ ಇವಾಜಿತಾಶ್ರಯ ಪರಿಧ್ಯುಪಾಂತಂ ಅನುಜಾನುವರ್ತಿತ ನಿಶಮ್ಯ ಭೀಷ್ಮೋಕ್ತಮಥಾಚ್ಯುತೋಕ್ತಂ ಪ್ರವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಧೂತ ವಿಭ್ರಮ ಶಶಾಸ ಗಾಮೇಂದ್ರ ಇವಾಜಿತಾಶ್ರಯ ಪರಿಧ್ಯುಪಾಂತಾಂ ಅನುಜಾನುವರ್ತಿತ ಶಬ್ದಾತ್ ನಿಶಮ್ಯ ಭೀಷ್ಮೋಕ್ತಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರುತೋಕ್ತಂ ನಿಶಮ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರವಣ ಕರ್ಕೆ ಯಾ ಸುನ್ ಕರ್ ಕಿಸ್ಕೋ ಭೀಷ್ಮೋಕ್ತ ಉಕ್ತ ಮತಲಬ್ ಜೋ ಭೀಷ್ಮ ಜೀನೆ ಕಹಾ ಥಾ ಅಭಿ ಜೋ ಯೇ ಲೋಗ್ ಗಯೆ ಥೆ ನಾ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಾ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜ್ಞಾನ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಾ ನೆ ಜೋ ಕಹಾ ಥಾ ಭೀಷ್ಮೋಕ್ತಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರುತೋಕ್ತಂ ಔರ್ ವಹೀ ಬಾತ್ ಜಬ್ ಅಚ್ಯುತ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೆ ಭೀ ಉನ್ಹೇ ಬತಾಯಿ ಪ್ರವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಧೂತ ವಿಭ್ರಮ ಪ್ರವೃತ್ತ ಮನ ಇಸ್ಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಔರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋನೆ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗ್ಯಾ ವಿಧೂತ ವಿಭ್ರಮ ಜೋ ಉನ್ಕಾ ಭ್ರಮ ಥಾ ವೋ ವಿಧೂತ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಉಸ್ಕಾ ಕ್ಷಯ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಖತ್ಮ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಶಶಾಸ ಗಾಮೇಂದ್ರ ಇವಾಜಿತಾಶ್ರಯ ಶಶಾಸ ಗಾಮೇಂದ್ರ ಯಾನಿ ಕಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಫಿರ್ ಶಾಸನ ಕಿಯಾ ಗಾಮ ಯಾನಿ ಇಸ್ ಪೃಥ್ವೀ ಕಾ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರ ಇವ ಇಂದ್ರ ಕಿ ತರಹ ಫಿರ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಇಸ್ ಪೂರಿ ಪೃಥ್ವೀ ಕಾ ಶಾಸನ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಅಜಿತ ಆಶ್ರಯ ಅಜಿತ ಆಶ್ರಯ ತೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಇಂದ್ರ ಕಿ ತರಹ ಪೂರಿ ಪೃಥ್ವೀ ಪರ ರಾಜ್ಯ ಕಿಯಾ ಶಶಾಸ ಗಾಮ ಇಂದ್ರ ಇವ ಜಿತಾಶ್ರಯ ಅಜಿತ್ ಆಶ್ರಯ ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಆಶ್ರಯ ಲೇಕರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೀ ಪರ್ ಆಧಾರಿತ ಥೆ ಔರ್ ಪೂರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಪರಿಧ್ಯುಪಾಂತಾಂ ಅನುಜಾನುವರ್ತತೆ ಪರಿಧಿ ಕೇತೆ ಹೇ ಮನ ಸಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸಮುದ್ರ ಕೆ ಸಹಿತ ಸಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಪರ್ ಉನ್ಹೋನೆ ರಾಜ್ಯ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಅನುಜಾನ್ ಅನುಜ್ ಜೋ ಥೆ ಉನ್ಕೆ ಛೋಟೆ ಬಾಯಿ ಥೆ ಅನುವರ್ತತ ಉನ್ಕಿ ಆಜ್ಞಾ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಔರ್ ಅನುಜ್ ಜೋ ಛೋಟೆ ಬಾಯಿ ಥೆ ವೋ ಉನ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಪಾಲನ್ ಕಿಯಾ ಜಾಕರ್ ಯಾನಿ ವೋ ಜೋ ಭೀ ಉನ್ಕೋ ಬೋಲ್ ರಹೆ ಥೆ ವೋ ಉನ್ಕಿ ಆಜ್ಞಾಓಂ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಸಾರೇ ಭಾಯಿ ಉನ್ಕಿ ಆಜ್ಞಾಓಂ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಔರ್ ವೋ ಕಿನ್ಕಿ ಆಜ್ಞಾಓಂ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಅಜಿತ ಆಶ್ರಯ ಯಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಮೇ ಉನ್ಕಿ ಆಜ್ಞಾಓಂ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಆಜ್ಞಾಓಂ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಔರ್ ಸಾರೇ ಭಾಯಿ ಉನ್ಕೆ ಭಾಯಿಯೋಂ ಕಿ ಆಜ್ಞಾ ಅಭಿ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಯೇ ಜೋ ಹೇ ವೋ ಶೌನಿಕ ಮುನಿ ಕೆ ದೂಸರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾ ಉತ್ತರ ದೇನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಹೇ ಜೈಸೆ ಕಲ್ ಶೌನಕ ಮುನಿ ನೇ ಪೂಛೆ ಥೆ ನಾ ದೋ ಪ್ರಶ್ನ ಥೆ ಉಸ್ಮೇ ಜೋ ಪಹಲೆ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಶೌನಕ ಮುನಿ ನೇ ಪ್ರಶ್ನ ಕಿಯೆ ಥೆ ಹತ್ವಾ ಸರಿಕ್ತಸ್ಥ ಆತತಾಯಿನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮ ಭೃತಾಂ ವರಿಷ್ಠ ಸಹಾನುಜಯ ಪ್ರತ್ಯವರುದ್ಧ ಭೋಜನ ಕಥಂ ಪರಿ ಕಥಂ ಪ್ರವೃತ್ತ ಕಿಮಕಾರ ಶಿತ್ತತ ಕೇಸೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಉಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ ಕೇಸೆ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ ಕಥಂ ಪರಿವೃತ್ತ ಔರ್ ಕಿಮಕಾರ ಕಾರ ಶಿತ್ತತ ಔರ್ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ಹೋನೆ ಉಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕೋ ಚಲಾಯಾ ತೋ ಉಸ್ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಚಲಾಯಾ ಉಸ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಆಜ್ ಕೇತೆ ಹೇ ಅನುವಾದ ದೇಖಿಯೇ ಜೋ ಕುಚ್ ಭೀಷ್ಮ ದೇವ್ ತಥಾ ಅಚ್ಯುತ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಕಹಾ ಥಾ ಉಸ್ಸೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠರ್ पूर्ण ज्ञान विज्ञान के मामले में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो गए थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे, तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजी ज्येष्ठाधिकार यानी जो ज्येष्ठ भाई है उसका ही अधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकारी का नियम प्रचलित था। उन दिनों हस्तिनापुर अब दिल्ली का एक अंश है, पहले हस्तिनापुर था और अब भी वो दिल्ली में है, उसका राजा समुद्रों समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था। और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराजा परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे और धर्मात्मा राजा के भाइयों में पूर्ण सहयोग था। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा या पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र की से की जा सकती है, जिस प्रकार इंद्र चंद्र सूर्य वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के प्रतिनिधि राजा हैं, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे नहीं थे। उन्हें भीष्म देव ने तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतएव उन्हें हर वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान था। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से समझाया है। जैसे यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं निशम्य भीष्मोक्तम अथा अच्युतोक्तम, जिस तरह से भीष्म पितामह ने उन्हें समझाया राजधर्म के विषय में और पुनः अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, उसी प्रकार उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके अज्ञानता को समाप्त हो गए, उनका भ्रम समाप्त हो गया उससे, और उसी ज्ञान और विज्ञान के साथ उन्होंने राज्य किया। जिस तरह के आजकल के राजा होते हैं बस वोटर्स वोट देकर उसको राजा बना देते हैं, ना कहीं से शिक्षा लेते हैं, राजधर्म उनको पता होता है और ना ही नीति धर्म उन्हें पता होता है, बस वो राज्य करने चले जाते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि उन्हें भीष्म देव तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतएव उन्हें हर वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान था, हर उन्हें पता होता था कि किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, हर एक चीज उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और आजकल क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी हो तो भी वह अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वैचारिक विषमताओं या अन्य स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ते रहते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो उनके पास एक तो धर्म था, ज्ञान था, विज्ञान था, और प्लस क्या था कि अनुजा जो उनके अनुज थे अनुवर्तते वो भी उनकी आज्ञाओं का पालन कर। अब जिनके अनुज भीम जैसे बहुत ज्यादा पराक्रमी और अर्जुन जैसे गांडीव धनुषधारी हों, अब और नकुल और सहदेव जैसे जिनके अनुज हों और सब उनके साथ चल रहे हों, तो फिर उनको कोई भी राज्य करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आजकल क्या होता है, एक अगर उनको ज्ञान होता भी हो जो उनके प्रधानमंत्री हैं या, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपनी बात मनवा सके। इसलिए जो अपोजिशंस होती हैं, जो दूसरी पार्टीज होती हैं, वो उनको अपने अंडर में रखती हैं और फिर उल्टे सीधे उनके साथ है ना उनको कॉन्टेक्ट करने होते हैं, जिसके कारण वो मतलब सब बिगड़ा हुआ है। राजनीति पॉलिटिक्स जो है वो कोई स्वतंत्र नहीं है। जिस तरह यहाँ पर बताए ना, एक तो उनके पास ज्ञान था, विज्ञान था, दूसरा उनके पास शक्ति भी थी। जब ये सब मिलते हैं ना तभी एक अच्छा राज्य बन सकता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी हो तो भी वह अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वैचारिक विषमताओं या अन्य स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रमाणिक दूत भीष्म देव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। आजकल क्या होता है, सब अपना मत देते हैं। बस वो क्या सोचते हैं, आप लोग सब चुप करो, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन आप जो कह रहे हो वो प्रामाणिक है या नहीं है कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। सब अपने अपने मन से कोई मत बनाते हैं और चाहते हैं कि सब हमें फॉलो करें, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने मन से कोई राजमत नहीं बनाया था, बल्कि उन्हें प्रामाणिक आदेश प्राप्त थे। भगवान अच्युत भगवान श्री कृष्ण के आदेश और उनके परम भक्त भीष्म देव के उपदेशों का वो अनुगमन करते थे। शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे। आप अपनी तरफ से कोई भी मत नहीं क्रिएट कर सके, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं, तो हम जो बात कहेंगे उसमें बहुत सारे दोष होंगे, वो कभी प्रमाणिक नहीं हो सकती। लेकिन जो शास्त्र में लिखा है, जो भगवान ने कहा है, तो उसको यदि कोई फॉलो करता है तो वो कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कि किसी स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करना चाहिए। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत सारे संसार पर शासन कर सके, क्योंकि जो नियम थे वे अमोघ थे और सबों पर शासन रूप से लागू होते थे। एक विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। वास्तव में एक आजकल क्या होता है कि ना बस झगड़ते रहते हैं दूसरे दूसरे पॉलिटिक्स, एक दूसरे सारे राज्य एक दूसरे से झगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रमाण को स्वीकार नहीं करते, वो अपने मनमति से कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह तथा अच्युत भगवान के आदेशों की पैरवी की है, इसीलिए वो इतना सुंदर राज्य कर सके। क्योंकि जो नियम थे वो क्या थे, अमोघ थे, उन्हें कोई गलती नहीं थी, सबों पर समान रूप से लागू होते थे। एक विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। जब हम भगवान श्री कृष्ण या उनके किसी भक्त के आदेश, जो कि वो भक्त का मतलब होता है जैसा भगवान ने कहा एज इट इज दोहराए, है ना। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, तो भक्त क्या कहता है, कृष्ण सर्वस्त्र प्रभो। यानी कि उसमें फर्क तो नहीं हुआ ना, कृष्ण ने भी कहा है अहम, तो अहम का मतलब कृष्ण ही है, तो भक्त वही बात बताता है। तो अगर कृष्ण या उनके भक्तों के द्वारा यदि सुनकर एज इट इज ज्ञान के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो वही प्रमाणिक कार्य है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अपूर्ण मानव सबों के लिए स्वीकार्य विचारधारा की सृष्टि नहीं कर सकता। अपूर्ण क्यों लिखा है, क्योंकि इंद्रियां जो हैं उनके अंदर चार दोष हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं, पूरा ज्ञान नहीं है, धोखा देना, धोखा खाना और मोहग्रस्त होना, ये सब इंद्रियों के अंदर ये सब दोष हैं जिनके कारण कोई भी ऐसा निर्णय नहीं दे सकती, ऐसी विचारधारा नहीं दे सकती जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वीकार्य हो। केवल पूर्ण तथा अच्युत व्यक्ति ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान पर लागू हो और जिसका पालन सारे संसार द्वारा हो सके। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार सरकार नहीं होती। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है, यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्ख है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं। अतएव कार्यकारी अध्यक्ष को युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और विश्व पर शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी राज्य सत्ता होनी चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा राज्य चलाया करते थे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो अत्यंत ही सुंदर राज्य चलाने के विषय में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया और इसी बात को यहाँ सूत गोस्वामी कहते हैं कि निशम्य भीष्मोक्तम अथा च्युतोक्तम, यानी जो पितामह ने कहा उसको सुनकर, निशम्य माने सुनकर, और फिर उसी बात को जब कृष्ण ने रिपीट किया, यानी फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी अच्युत ने उन्हें यही बात समझाई, तो क्या हुआ? प्रवृत्त विज्ञान। अब देखो पहले भी युधिष्ठिर महाराज जो है उसको भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे, सारे ऋषि मुनि भी समझा रहे थे, लेकिन तब उन्हें समझ में नहीं आ रही थी बात और वो बस ऐसे ही दुख कर रहे थे कि मेरे कारण हुआ, सारी हत्याओं का कारण मैं हूँ, मैंने ही सारे कुल का नाश करा, तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, पहले समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब भीष्म पितामह से उन्होंने सुना उसके बाद वही चीज क्या है, अथा अच्युतोक्तम, और जब अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी को रिपीट किया तो बार 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 एक ही विषय को सुनने से क्या हुआ, विज्ञान, प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम, विज्ञान उनको विज्ञान उत्पन्न हुआ। विज्ञान मीन्स विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान क्या है? ईश्वर ईश्वर आधीनम जगत न स्वतंत्रम, ये जो जगत है वो भगवान के अधीन है, ये स्वतंत्र नहीं है। विज्ञान क्या है कि ये जगत ईश्वर के अधीन है, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। और विज्ञान से क्या होता है, विदूत विभ्रम, जो सारे हमारे भ्रम है। अब पहले क्या भ्रम था इनको कि सबकी हत्या हुई है, ये मेरे कारण हुई है, लेकिन अब उनका अज्ञान चला गया और विज्ञान उत्पन्न हो गया, जिससे क्या हुआ कि उनको ये याद आ गया, ये बात समझ में आ गई कि ये जगत ईश्वर के द्वारा निर्मित है, वही इसके स्वामी हैं, वही उसके कंट्रोलर हैं और करने कराने वाले सब वही हैं। ये जानना विज्ञान है। अब यहाँ पर संसार में विज्ञान किसको कहा जाता है, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं ये विज्ञानी है। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पर विज्ञान जो है, शास्त्र विज्ञान का मतलब बताता है क्या है, ईश्वर आधीनम जगत न स्वतंत्रम, कि जगत जो है वो भगवान का आधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है। प्राकृत पदार्थों को तोड़ना फोड़ना काटना गलाना इसको विज्ञान नहीं कहते। ये भौतिक पदार्थों को तोड़कर या फिर उनको मिलाकर चाहे कोई एरोप्लेन बना दे, कार बना दे, ट्रेन बना दे, तो उसको विज्ञान नहीं कहते। ये तो शास्त्र के अनुसार ज्ञान भी नहीं है, ये विज्ञान कैसे हो सकता है? शास्त्र ज्ञान को क्या कहता है, ज्ञान क्या है, आत्मा और देह के भेद को जानना। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, अशोचानन वशोचस्म प्रज्ञा वादांश भाषते, जो प्रज्ञा है जो बुद्धिमान है उसकी तरह बात तो कर रहे हो परंतु गतासुन गतासुन से नानु शोचन की पंडिता, जो वास्तविक ज्ञानी होते हैं वो तो इस देह की बात कभी करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है आत्मा और देह के भेद को जानते हैं, चित्त और अचित्त को जानते हैं कि क्या वस्तु है जिसको हमें जिसके विषय में हमें परेशान होना चाहिए और क्या वस्तु है जिसके विषय में आज का व्यक्ति जो केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से है अपनी इंद्र तृप्ति की वस्तुओं को इकट्ठा करके अपना जीवन बर्बाद करता है, उसको ज्ञानी कहा जाता है संसार में। लेकिन वो वास्तव में वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वास्तविक आत्मा है जो वो तो तड़प रही है, वो तो कभी कुत्ते के अंदर जा रही है, कभी बिल्ली के अंदर जा रही है, कभी सुअर के अंदर जा रही है, कभी गटर के कीड़े के अंदर जा रही है, उसके बारे में वो सोचता नहीं, चिंता नहीं करता, तो ज्ञानी कहाँ का हुआ। वास्तव में पदार्थ को जानना और आत्मा के फर्क, पदार्थ और आत्मा के फर्क को जानना, इसे ज्ञान कहते हैं। और ये जानना कि जो कुछ भी है, चाहे आत्मा हो या भौतिक पदार्थ हो, ये सब ईश्वर के अधीन है, इसको विज्ञान कहते हैं। शास्त्र के अनुसार इसी को ज्ञान कहते हैं कि आत्मा क्या है, देह क्या है, और ये जो कुछ भी है वो भगवान के अधीन है, इसको समझना क्या है, विज्ञान है। मतलब आजकल के लोग जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, आत्मा को जानते ही नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे मान लीजिए कहीं किसी की कार खड़ी है, अब वो पहले से ही कार खड़ी है तो हम जाकर इसको है ना जांचना शुरू कर दें, मापना शुरू कर दें, कितनी ऊंची है, इसके व्हील है ना कितने अच्छे हैं, इसके अंदर तेल कितना है, और मतलब सारा कुछ इस कार के विषय में जानना शुरू कर दें, मतलब कि इसका शीशा कैसा है, विंडो स्क्रीन कैसे हैं। तो यदि किसी को ये सारा ज्ञान तो हो जाए कार के विषय में, परंतु यदि ये न जाने कि ये कार किसकी है, मान लीजिए कि 4-5 साइंटिस्ट हों, वो कार को खोलें और उसके विषय में एक एक चीज जाने, और फिर कोई उसकी सीट ले जाए, कोई इसके व्हील ले जाए, कोई इसकी विंडोज लेकर उठाकर चला जाए और कहने लगे कि मैं इसका मालिक हूँ क्योंकि मैंने इसको इन्वेंट किया है, मैंने ये मेरा, तो जब उस कार का मालिक देखेगा तो दंड देगा कि नहीं देगा। सब कुछ जान लिया कार के बारे में, मगर ये नहीं जाना कि यार यह कार किसकी है, तो क्या ये कोई ज्ञान है। जैसे कहीं पर एक जगह पर पैसों का भरा हुआ बैग रखा हुआ हो और एक व्यक्ति रखा हो, और थोड़ी देर के बाद कोई आए 4-5 लोग और उसमें से पैसे निकाले, अरे वाह यहाँ पर तो पैसों का बैग रखा हुआ है, आ जाओ ये आपके हो गए, ये आपके होंगे, ये आपके होंगे, ये आपके होंगे, तो फिर सामने जो उसका मालिक बैठा हुआ है वो आके उसको जूते मारेगा कि नहीं मारेगा कि मेरा बैग है, तुमने किससे पूछ के उठाया। उसी तरह इस जगत में बहुत सी वस्तुएं हैं, उसको हम खाते हैं और उसको अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, कोई ना जमीन में से पानी निकलता है, तेल निकलता है, और प्रकृति की वस्तुओं को लेबोरेटरीज में डालकर उसको तोड़ फोड़ करके जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, धरती में से पेट्रोल निकालते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन कभी उनसे पूछा जाए कि सब वस्तुएं किसकी हैं, तो सब कुछ भौतिक पदार्थ इस प्रकृति से लेते हैं, और उनसे यदि पूछा जाए कि किसकी चीजें जिनको आप यूज कर रहे हो, किसने बनाई, तो बोलेंगे बाय चांस ये तो अपने आप ही बन गई है, कोई बनाने वाला नहीं है, बनाने वाला कोई नहीं, और खाने वाले तुम नियम से आगे खाने के लिए, बनाने वाला कोई है ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है जैसे आप किसी 5-स्टार होटल में जाओ, वो भोजन बनाने वाले ने कुक ने बहुत बढ़िया भोजन बना के रखा हो और वो उस समय के लिए अदृश्य हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, उस समय किसी काम से चला गया हो और कोई जाकर देखे कि वाह इतना सारा खाना तो ऐसे ही बना हुआ है, और वो खाने लगे तो कोई उनसे पूछे कि भाई बनाने वाले से तो पूछा ही नहीं, पता नहीं किसने बनाया, तो बोले नहीं नहीं बनाया किसी ने नहीं, ये सब तो बाय चांस ऑटोमेटिकली बन गया है। तो वो सब ऑटोमेटिकली बन गया और तुम भी क्या ऑटोमेटिकली बन गए आ गए उसको खाने के लिए। और ऐसे व्यक्तियों को नोबल प्राइज भी मिलता है। श्री प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, नोबल प्राइज फॉर द फूल्स, है ना। जैसे यूं समझो कि गधे को पीएचडी का पुरस्कार मिला है। ज्ञानी ये नहीं होता कि भौतिक जो भगवान ने वस्तुएं उठाई बनाई हैं उन्हीं को उठाकर एक अलग शेप दे दे और ये कहे मेरा आविष्कार है। वास्तव में ज्ञानी क्या है? भौतिक पदार्थ और आत्मा के डिफरेंस को जाने और ये जाने कि चाहे वो भौतिक पदार्थ हो या चाहे जीव आत्मा हो, सबका कंट्रोलर भगवान है, सबका ईश्वर भगवान है, सबका निर्माता भगवान है। तो यह ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है भौतिक वस्तुओं और आत्मा के डिफरेंस को जानने के लिए। ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर विज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि ये सब वस्तुएं भगवान से आई हैं। और विज्ञान प्राप्त करना क्यों आवश्यक है? जहाँ पर कह रहे हैं कि प्रवृत्त विज्ञान विदूत विभ्रमा, जब विज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भ्रम दूर हो जाता है। यानी जब तक हम भगवान को नहीं जान जाते, इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माण करता ये नहीं जानते कि वो कौन है, तब तक विज्ञान प्राप्त नहीं होता। और विज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक भ्रम दूर नहीं होता। और भ्रम क्या है? जब जीव अपने आप को कर्ता मानता है, मैं स्वामी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने ही किया है और मुझे ही भोगना पड़ेगा, ये सब भ्रम है। वास्तव में जीव को क्या जानना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान के आदेशों का पालन करना है। बस यही भ्रम है। जब तक जीव भ्रम में रहता है, जब तक वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, तब तक उसे फंसना पड़ेगा, फिर उसे भुगतना पड़ेगा। और जब वो ये जान लेता है कि सब कुछ कृष्ण की इच्छा के कारण हो रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र बना हूँ, तब वो समस्त कर्म बंधन से छूट जाए। और जब इस तरह से उनका अज्ञान भ्रम जो है वो नष्ट हो गया, उन्हें विज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने शासन किया। शशास गाम इंद्र इव, उन्होंने इंद्र की तरह इस पृथ्वी का पालन किया। इंद्र कैसे पालन करते जानते हैं आप? इंद्र एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो सृष्टि के संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। कैसे? इंद्र जब वर्षा करते हैं तो उससे अन्न उपजता है और अन्न से जीव जो है ना उनको पुष्टि मिलती है। जो जीव है, मनुष्य है, वो अनाज से उनको पुष्टि मिलती है। इंद्र जब वर्षा करते हैं तब धरती को है ना पुष्टि मिलती है। धरती के अंदर जो उपज की वो होती है ना शक्ति, वो वर्षा से उत्पन्न होती है। पेड़ और पौधे जो है वो इंद्र के कारण उगते हैं, जिससे कि संपूर्ण जितने पशु हैं उनका आहार जो है, जैसे घास पौधे वगैरह, बकरियों के गायों का जो भोजन है वो भी इंद्र के द्वारा। और इंद्र जब वर्षा करते हैं उसी से ही जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं उनको भी भोजन प्राप्त होता है, उनमें भी वृद्धि होती है। यानी सारे जीव जो हैं वो इंद्र के शासन में सुखी होते हैं। जब इंद्र के कारण ही सबको संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर इंद्र का नाम दिया गया है शशास गाम इंद्र इवा, कि इंद्र की तरह उन्होंने शासन किया। यानी कि अपने राज्य के, अब जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था तात्पर्य में कि जो हस्तिनापुर का राजा होता था वो विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था, पूरे विश्व का होता था। तो वो सब का पालन करा इंद्र की तरह। उन्होंने भी हर एक के विषय में सोचा, अपनी प्रजा के विषय में। और क्या किया? अजित आश्रया, भगवान श्री कृष्ण का आधार लिया। युधिष्ठिर महाराज सदैव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञाओं का पालन करते थे। जैसा कृष्ण चाहते थे वैसे ही वो अपने राज्य को चलाते थे। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की आज्ञाओं का पालन करते थे और इस तरह से उन्होंने समग्र सृष्टि पर राज्य किया। परिद्युपांत, यानी कि जितना परिधि है, समुद्र है, वहां तक उनका राज्य था। और अनुजा अनुवर्तते, अनुज जो थे भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज फॉलो करते थे। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण की आज्ञाओं का पालन करते थे और सारे उनके अनुज थे वो युधिष्ठिर महाराज की आज्ञाओं का पालन करते थे। इस तरह से एक सुंदर राज्य की व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में अंत में बताया है कि अतएव कार्यकारी अध्यक्ष को युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और विश्व पर शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी राज्य सत्ता होनी चाहिए, उसके पास शिक्षण होना चाहिए, उसके पास बल होना चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। विश्व राज्य यानी सारे संसार का एक एकमात्र जो चक्रवर्ती सम्राट होता है ना, वो ऐसा राजा होना चाहिए जिसके पास पूरा ज्ञान भी होना चाहिए और उसके पास पूरी सत्ता भी होनी चाहिए। और उन दिनों संसार सुखी था, श्री प्रभुपाद जी बोलते, क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर जैसे राजा राज्य चलाते थे इसलिए सब सुखी थे। आजकल क्या है, सब दुखी है क्योंकि राजा ही अपराधी है, राजा को ज्ञान नहीं है और इसलिए सारी जो प्रजा है वो भी दुखी है। इस श्लोक में जो सबसे सुंदर बात है वो पहली लाइन में सूत गोस्वामी कहते हैं, निशम्य भीष्मोक्तम अथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विद्युत विभ्रम। निशम्य भीष्मोक्तम अथा अच्युतोक्तम, यानी जैसा भीष्म पितामह ने कहा वैसा ही कृष्ण ने कहा और इससे क्या हुआ, प्रवृत्त विज्ञान, उससे उनको विज्ञान उत्पन्न हुआ और भ्रम नष्ट हो गया। वास्तव में भक्तों ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, ज्ञान उत्पन्न हो, विज्ञान जो है वो वास्तविक विज्ञान प्राप्त हो और भ्रम दूर हो जाए। जब तक ये नहीं होता तब तक हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। और उसके लिए एक अत्यंत ही सुंदर उक्ति बताई है यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि पहले तो युधिष्ठिर महाराज को समझ में बात नहीं आ रही थी, लेकिन जब भीष्म पितामह ने कहा उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यानी बार बार एक ही विषय को सुनने से भ्रम दूर हो गया, विज्ञान प्राप्त हो गया। अब यानी इसका मतलब ये है कि हम जब एक ही चीज को बार 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 सुनते हैं तो उससे हमारा विज्ञान जो है वो उत्पन्न होता है, अज्ञानता दूर हो जाती है, भ्रम दूर हो जाता है। तो हमें एक ही बात को बार 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 सुनना चाहिए। अब एक ही बात कौन सी है, वो बात जायज भी हो सकती है ना जायज भी। अब चोरों के साथ आप रहोगे तो चोर लोग क्या बताएंगे आपको, चोरी परम धर्म है। दूसरा चोर बोलेगा हाँ चोरी परम धर्म, चोरी से ही तो हम सब सुखी होते हैं, चोरी से तो हमारा घर चलता है, चोरी से ही हम सब को इतना सब कुछ मिल रहा है, चोरी से ही तो हमारा जीवन सुखी हो रहा है। तो वो चोरी को आपको इतना सुंदर ढंग से बताएंगे कि आप सोचने लगो कि वाकई मेहनत की कमाई से तो कुछ प्राप्त नहीं होता, चोरी से ही सब संतुष्टि प्राप्त होती है, तो मैं भी कल से चोरी करना प्राप्त कर स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन वास्तविक बात क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है या गलत है उसका प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण क्या होना चाहिए, तो शास्त्र कह रहा है मतम च वासुदेव, जो कृष्ण ने कहा है वही सत्य है। और वही चीज गुरु का मतलब क्या है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु मीन्स हु स्पीक्स ऑन बेसिस ऑफ कृष्णा ऑफ शास्त्र, अदरवाइज इज नॉट गुरु। जो शास्त्र के अनुसार बात करता है तो वो गुरु है, अगर वो शास्त्र के अनुसार बात नहीं कर रहा है तो उसको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि वो कोई आपको मंत्र दे रहा है, कोई आपको पूजा की विधि बता रहा है, तो पहले उसे बताएं कि कौन सी शास्त्र के अनुसार आपको कह रहा है। अगर वो शास्त्र के अनुसार बता रहा है आपको, शास्त्र बेस पर बता रहा है, तो वो गुरु कहलाने के योग्य है, अन्यथा नहीं है। और शास्त्र का क्या मतलब है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्र मीन्स द ओपिनियन ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज। कौन है ग्रेट अथॉरिटीज, नारद, व्यास, महादेव, कृष्ण और ये सब वेद व्यास भी, ये सब क्या है, ये ग्रेट अथॉरिटीज हैं, 12 महाजन हैं। और वही कहते हैं जो कृष्ण, अब जो भीष्म पितामह वही कह रहे हैं जो कृष्ण ने कहा है, भीष्म पितामह अपनी तरफ से कोई दूसरा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, भीष्म पितामह भी यही कह रहे हैं क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा थी इसीलिए तुम्हें अपराध नहीं लगेगा। और कृष्ण भी यही कहते हैं कि तुम सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच, तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यदि एक ही बात को हम बार 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 बोलेंगे, जैसे हमें एक ही बात बोलनी चाहिए, जैसे वेद व्यास जी ने क्या बोला, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ईश्वर परम कृष्ण, और वही बात अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम अव्ययम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। आप परम पवित्र हैं, आप परम धाम हैं, परम आश्रय हैं, और मैंने कहता, ये तो सब कहते हैं, आहुस्तम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तदा असितो वे देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। असित देवल नारद वेद व्यास सब यही कहते हैं, और आपने भी कह दिया अहम सर्वस्य प्रभु, के मैं ही समस्त जीवों का स्वामी। तो एक ही बात को बार 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 बोलना है, पुनरावृत्ति करनी है इसी बात की, बस क्या कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। यदि जनता के सामने हम सब बार 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 एक ही बात की आवृत्ति करेंगे तो जनता क्यों नहीं मानेगी। हमें केवल प्रमाणिक बात कहनी है, क्या कहना है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम आत्मा है और आत्मा केवल कृष्ण की दासत्व में रह कर ही सुखी हो सकती है। परंतु आजकल इतना पाखंड चल रहा है, कोई अपना भगवान बता रहा है, कोई अपना भगवान बता रहा है। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि आप किसकी पूजा करते हो, हम यदि बोले कि हम भगवान की पूजा करें तो बोलते हाँ ठीक है भगवान की तो पूजा करते हो, मगर कौन से वाले भगवान की, ऐसा कोई भगवान 15-20 है जो कौन से वाले भगवान पूछते हैं। आजकल जो प्रचारक हैं उन्होंने इतनी बिगाड़ दी है संसार की हालत को कि वो भगवान तक को नहीं बता सके कि भगवान कौन है। साफ साफ लिखा वेद व्यास जी ने, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, कहीं नहीं भगवद्गीता में लिखा कि कृष्ण ने कहा, लेकिन भगवान कह दिया। मतलब व्यास देव जी ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। वेद व्यास जी ने पूरी भगवत गीता में कहा है कि कृष्ण भगवान है, और वहां से समझ में नहीं आया तो फिर बहुत सारे अवतारों के विषय में बताने के बाद कहा, एतेचंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यदि भगवान कोई हो सकता है तो वो केवल कृष्ण हो सकता है, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं होता। इसी बात को समझना है और इसी बात को समझाना है। परंतु आज का एक बच्चा अपना एक अलग मत लेकर बैठा हुआ है, कोई सोचता है ये भगवान है, कोई सोचता है वो भगवान है, और भगवान किसी देवी देवता को मान लेते हैं या किसी व्यक्ति को मान लेते हैं, और अगर हम उसको बताने के लिए सोचना कि नहीं हम बताते हैं प्रामाणिक बात क्या है कि वास्तव में भगवान कौन है, तो कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं, बस यही कहेंगे कि मैं ठीक हूँ आप गलत हो। आप कृष्ण को भगवान कहते हो, कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं। तो वास्तव में प्रमाण हम अपना नहीं दे सकते, प्रमाण शास्त्र का देना होता है। शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते कि कृष्ण भगवान है, शास्त्र कहता है कि कृष्ण भगवान है। और इसी चीज को यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं कि निशम्य भीष्मोक्तम अथा च्युतोक्तम, कि वास्तविक प्रमाण क्या है, जैसा अच्युत भगवान कह रहे हैं और जो उनका भक्त कह रहा है उसी को सुनने से क्या होता है, प्रवृत्त विज्ञान विदूत कर्मश, आपके जो विज्ञान है आपको उत्पन्न होगा, और विदूत विभ्रम, आपके सारे भ्रम जो है वो समाप्त होंगे। कब, जब आप भगवान की बात मानोगे, भगवान की डायरेक्ट बात, भक्त जब बात करेगा वो डायरेक्ट से भगवान की बात करेगा, और इससे क्या होगा, क्योंकि जो भगवान ने बोला है वही भक्त बोल रहा है, तो वही प्रमाण है, और वो दोनों अलग अलग बात नहीं बोल रहे, एक ही बात बोल रहे हैं, तो उसी बात को फॉलो करने से क्या होगा, प्रवृत्त विज्ञान, वास्तविक विज्ञान उत्पन्न होगा। विज्ञान क्या है, ईश्वर आदिनम जगत न स्वतंत्रम, कि सारा संसार जो है वो भगवान के आदीन है, ये जगत ईश्वर के द्वारा निर्मित है और वही इस जगत की समस्त कार्यकलापों के स्वामी है। तो ये विज्ञान उत्पन्न होगा, इससे क्या होगा, ये जो भ्रम है हमारे विदूत विभ्रम, सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे, जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा, कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी और हम अपने वास्तविक अधिकार को, वास्तविक धाम को, वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छी तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।